नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप सुन रहे हैं रेडियो आईबीसी। आज का न्यूज मेकर में चर्चा उस एक विषय की जिस पर सारे देश में कई दफा चर्चाओं के दौर चले, चुनाव सुधार। चुनाव सुधारों पर चर्चा कोई नई बात नहीं, लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरह 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए और उसमें कुछ अहम प्रश्न उठे, उनका जवाब देश की सुप्रीम अदालत से लेकर आम जनता तक ने बार बार पूछा। 5 राज्यों में चुनाव हुए तो कुछ धार्मिक आयोजनों के साथ साथ संक्रमण को फैलाने के लिए चुनावी रैलियों पर सबसे ज्यादा तोहमत लगी, उंगलियां चुनाव आयोग पर भी उठी। आखिर क्यों नहीं बढ़ते फैलते संक्रमण को देख चुनाव टाले गए, क्यों नहीं वक्त रहते आयोग ने इस पर संज्ञान दिया, और तो और क्यों नहीं चुनाव का स्वरूप बदलने को लेकर कदम उठाए गए। मामले में आरोप प्रत्यारोप की खींचतान के बीच मामला देश की सुप्रीम अदालत तक भी पहुंचा, जहां केंद्र सरकार समेत चुनाव आयोग को इस मसले पर अपना पक्ष रखना पड़ा। आज का न्यूज मेकर में हालिया दौर में संपन्न हुए चुनाव पर चुनाव आयोग का क्या पक्ष रहा, इसकी चर्चा करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच में देश के 5 राज्यों में चुनावी रैलियां हुई, जिसे लेकर चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाए गए। खैर, आरोपों की बौछार के बावजूद चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी कर ली। नए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने चुनाव कराने से लेकर तैयारी और चुनावी व्यवस्था में सुधार तक पर अपनी बात खुलकर रखी है। कोरोना महामारी के बीच 5 राज्यों में चुनाव आखिर क्यों कराए गए, इस पर नए चुनाव आयुक्त का जवाब है कि चुनाव से पहले सारे संबंधित पक्षों से इनपुट लिया जाता है, जिसमें राजनीतिक दल, गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय भी शामिल है। यहाँ तक कि राज्यों के मुख्य सचिवों से भी इस बारे में बात होती है। जनवरी फरवरी 2021 में जब देश में संक्रमण कम था, तब भी 20 अगस्त 2020 की गाइडलाइंस में कोई ढिलाई चुनाव आयोग ने नहीं बरती। मतदान केंद्र में लोगों की मौजूदगी पर बंदिशों से लेकर मतदान केंद्रों की संख्या 80,000 तक बढ़ाई गई। ये वो जरूरी उपाय थे जो चुनाव आयोग को करने थे और उसने किए। कोविड नियमों का पालन करते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त होकर वोट डालने की व्यवस्था चुनाव आयोग ने दी। यही आयोग का मकसद था और यही आयोग का काम। जब नए आयुक्त से पूछा गया कि क्या पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव जरूरी था, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हालात के कारण पश्चिम बंगाल में अधिक चरणों में चुनाव कराने का इतिहास रहा है। 2016 और 2019 में भी 7 चरणों में चुनाव हुए थे। 2021 में आयोग ने जब दौरा किया तो राजनीतिक दलों ने हर बूथ पर केंद्रीय बलों की मांग की। केंद्रीय गृह सचिव ने भी इस पर इनपुट दिया। इस बारे में फैसला करने से पहले आयोग ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट पर भी गौर किया। राज्य के गृह सचिव, सभी जिलों के अधिकारी, SP, इन सबसे व्यापक विचार विमर्श के बाद ही 8 चरणों में चुनाव की प्रक्रिया तय की, लेकिन मतदान और मतगणना की कुल अवधि कम रखी। 2016 में ये 77 दिन थी, जो अब की बार घटाकर 66 दिन रखी गई, और इसका नतीजा देश के सामने है। इतने तनाव के बावजूद शांतिपूर्ण माहौल में 82% मतदान हुआ। हर चरण में मतदान की अलग से अधिसूचना जारी होती है। अगर बीच चुनाव में कोई तब्दीली की जाती तो सारी चुनाव प्रक्रिया पटरी से उतर जाती। अगर 1 या 2 चरणों को कंबाइन करके चुनाव कराया जाता तो सुरक्षा बलों की तैनाती को बदलना पड़ता, मतलब संशय की स्थिति बन सकती थी, और इसीलिए आयोग ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय आयोग ने धीरे धीरे प्रतिबंधों को सख्त तरीके से पूरा कराया। तो क्या आने वाले वक्त में चुनावी प्रक्रिया में कुछ बड़े बदलाव या इस चुनाव से कोई सबक आयोग ने लिया है? इस पर नए आयुक्त का जवाब रहा कि हमें बड़ी पब्लिक रैलियों की बजाय अब डिजिटल और वर्चुअल प्रचार अभियान को अपनाना पड़ेगा। हम इस बारे में राजनीतिक दलों से और अन्य पक्षों से विचार विमर्श करेंगे। एक सवाल जो बार बार सारे देश में उठा और पूछा गया कि क्या इस महामारी के दौर में चुनाव कराना इतना जरूरी था, क्या इसे बचना नहीं चाहिए था? इस पर आयोग का जवाब है कि किसी भी विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव कराना निर्वाचन आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी होती है। जब हमने फरवरी में चुनाव कराने का फैसला किया था तो महामारी की स्थिति ऐसी नहीं थी जैसी बाद में हो गई। 4 राज्यों, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम में प्रचार अभियान 4 अप्रैल को खत्म हो गया। मतदान 6 अप्रैल को हुआ। उस समय ये दूसरी लहर देश में नहीं आई थी और मतदान कोविड गाइडलाइंस के तहत ही हुआ। फिर 16 अप्रैल से लहर का असर दिखा और चुनाव आयोग ने इसके बाद कई नई बंदिशें लगाई। 400 से ज्यादा रैलियों को कैंसिल किया गया। कोविड नियमों के उल्लंघन पर FIR दर्ज की गई। ऐसा पहली बार हुआ कि विजय जुलूस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रहा। अब आने वाले वक्त में चुनावी प्रक्रिया में क्या और किन परिवर्तनों को नए आयुक्त आकार देना चाहेंगे, इस पर उनका जवाब था कि हम वोटर्स कार्ड की डिलीवरी को और चुस्त करना चाहते हैं। एक बड़ा सुधार हम मतदाता सूची को अपडेट करने के बारे में भी करेंगे। संविधान में व्यवस्था है कि 1 जनवरी को हर साल चुनाव मतदाता सूची तैयार की जाए, लेकिन जो युवा 2 जनवरी या उसके बाद 18 साल के होते हैं उन्हें मताधिकार के लिए 1 साल और इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं करना पड़े, जब भी कोई 18 साल का हो तो उसे मताधिकार मिल जाए। इसके लिए आयोग जन प्रतिनिधि कानून 1950 की धारा 14B में बदलाव करना चाहता है। हम मतदाता सूची को आधार डेटा से जोड़ना चाहते हैं, ताकि कोई भी मतदाता जब जगह बदले तो वो कई जगह पर पंजीयन न करा पाए। पिछले कई चुनाव की तरह अब की बार भी चुनाव ईवीएम से कराने पर भी विपक्ष के कुछ दलों और नेताओं ने बार बार सवाल उठाए। तो क्या ये बहस अब की बार खत्म हुई है? इसके बारे में आयोग क्या करना चाहता है? इस सवाल के जवाब में नए चुनाव आयुक्त ने कहा कि हर चुनाव के बाद ईवीएम कसौटी पर खरी साबित हुई। चुनाव आयोग का दृढ़ मत है कि ईवीएम के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। तकनीकी उपायों और सख्त प्रशासनिक व्यवस्था के बूते हम ये बात मजबूती से कह सकते हैं। इस चुनाव में भी ईवीएम पर आयोग का विश्वास घटा नहीं बल्कि पहले से कई गुना बढ़ा है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या एक देश एक टैक्स की तर्ज पर अब एक देश एक चुनाव नहीं होना चाहिए? इस पर आयुक्त का कहना है कि 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुआ करते थे। राजनीतिक वजहों से इसमें व्यवधान आया। एक साथ चुनाव कराने के लिए राजनीतिक आम सहमति की आवश्यकता पड़ती है, और ये सबको पता है कि हमारे देश में लागू व्यवस्था में अगर एकल चुनाव पद्धति को अपनाना है तो संविधान में कुछ सहमतियां बनानी पड़ेंगी, कुछ परिवर्तन करने होंगे। देश के बाहर रह रहे भारतीयों को वोट का अधिकार देने के बारे में आगे क्या होगा? इस सवाल के जवाब में नए आयुक्त ने कहा कि NRI के मताधिकार का मामला दरअसल पेचीदा है। आयोग ने 2015 में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया था, फिर 27 नवंबर 2020 को आयोग ने कानून मंत्रालय से इस बारे में संपर्क किया ताकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम की सुविधा विदेश में बैठे लोगों को दें। विदेश मंत्रालय से भी इस बाबत संपर्क किया गया। इस मुद्दे पर मंत्रालय से कई बार विचार विमर्श होता रहा है, लेकिन अब तक इस बारे में कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया है। पर प्रक्रिया रुकी नहीं है, आगे इसमें कुछ सकारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। तो अब चुनाव आयोग का आगे क्या टारगेट है? इसके जवाब में नए आयुक्त ने कहा कि दरअसल भारतीय निर्वाचन पद्धति को देखते हुए चुनाव आयोग का फोकस 4 बड़े लक्ष्यों को हासिल करना है। पहला, युवा जैसे 18 साल का हो उसे उसका मताधिकार मिल जाए, उसे और 1 साल तक केवल एक तारीख की वजह से इंतजार न करना पड़े। चुनाव के दौरान रैलियां ज्यादा से ज्यादा डिजिटल या वर्चुअली की जाएं, इस पर सहमति बनानी चाहिए। चुनाव खर्च की सीमा बढ़े और जितने भी जरूरी नए सुधार हों उन्हें किया जाए। और चौथा, विदेश में रहने वाले भारतीयों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का अधिकार मिले। इसके लिए भी काम जारी है और आने वाले वक्त में इसके प्रावधान किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर स्पष्ट है कि नए चुनाव आयुक्त ने जिस तरह से जवाब दिया है उससे एक बात तो तय है, 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव पर चुनाव आयोग पूरी तरह से स्पष्ट रहा है और अपने निर्णय को सही बता रहा है। दूसरी तरफ चुनाव प्रक्रिया में सुधार और सबसे बड़ी बात ये, एक देश एक चुनाव पर अभी काफी काम करना होगा, और इस दिशा में चुनाव आयोग के साथ साथ संविधान प्रदत्त अधिकारों और कर्तव्यों के दायरे में देश की संसद और राज्यों में विधानसभाओं को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। राजनीतिक दलों को भी इसमें सहमति बनाने में मदद देनी होगी। ये कब तक हो पाता है, फिलहाल इसकी कोई तारीख निश्चित नहीं है। आज का ये न्यूज ब्रेकर आपको कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं और इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। धन्यवाद। नमस्कार।